चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल आहे। मैं संगीता पमनानी आज प्रस्तुत करती हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है नसीहत। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए जिस पिन की जरूरत पड़ती है वो शायद उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली थी और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो इधर उधर ताकने लगी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा तो उसने मेरी तरफ फोन बढ़ा दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्योरा वगैरह पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, अमूमन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही मानो अभी भी किसी उलझन में हो। मैंने फिर विनम्रता से उससे पूछा, आपको अगर कहीं ज़रूरी कॉल करना है तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं? लड़की ने कहा, नो थैंक्स, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, मैं वेट कर लूँगी। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है ये मुझे याद नहीं। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम लाकर दी है उसी के नाम से होगी। उसने ओके कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने पूछा, कहाँ उतरेंगी आप? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, न ही मेरा घर है वहाँ। तो? मैंने उत्सुकता से पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है और हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई कि भला किस कैद में थी ये कमसिन अलर्ट सी लड़की। लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं इन सब चीज़ों से भाग आई हूँ। मुझे ताजुब हुआ, मगर अपने ताजुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है, मैंने कहा। उसने कहा, जी। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। यह बात सुनकर वो बहुत खुश हुई, बोली, वाओ, कब, कैसे? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट लगने लगी। मैंने कहा, कब कैसे कहाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपके घर में कौन कौन है। उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं, मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, भाई बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता, मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। फिर थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं स्कूल की क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाई और बधाई देते हुए पूछा, तो फिर आज आप कितने साल की हो गई? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे कि बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों। मैंने उसे बताया, मेरी उम्र 38 साल है, यानी मैं आपसे 20 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लगते तो नहीं हो। मैंने भी इतराकर मुस्कुरा दिया। तुम घर से भाग कर आई हो, पर तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब ने, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपना मूड बिल्कुल खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी क्या? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, भूल गया होगा शायद। मैंने उसकी प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन, आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। लड़की हामी भरते हुए बोली, हाँ, टैलेंटेड तो बहुत है वो, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और दूसरी 3 साल की। ये देखो उसकी तस्वीरें। मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ा दी। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में अच्छी जॉब थी मेरी, सैलरी भी अच्छी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा था। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, अपनी बेटी को जब पहली बार गोद में उठाया तो ऐसे लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर पर आया था, वापस जाना था लेकिन जा न सका। सोचा, इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे और उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं, तब भी घाटे में रहूंगा। मेरी 2 टके की नौकरी और उसका बचपन लाखों का। उसने सवालिया अंदाज में कहा, बीवी बच्चों को साथ में ले जा सकते थे ना वहां? मैंने कहा, काफी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद साथ रख सकते हैं, पर उस वक्त ही मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन-सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने अपने परिवार को चुना ताकि अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख सकूं। आप फिर वापस नहीं गए? उसने पूछा। छुट्टी पूरी कर मैं वापस कुवैत गया था और इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इंप्रेसिव स्टोरी। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने वो लव मैरिज की थी ना, फिर आप दोनों भागकर कहाँ गए थे? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर सवाल में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल ना समझ। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी कहा कि मेरी पत्नी के पिता ने मुझे पहली नजर में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार, कुछ भी। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जब उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। खुशबू ने मुझसे कहा था कि चलो भाग चलते हैं, मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने दो टूक बना कर दिया था। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे खानदान की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके उलट जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालूर कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाए, तब भी जवानी में किए हुए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूं कि लड़का लड़की को तौलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में जो ये होता आया है वो आज भी जारी है। हालांकि ये नजरिया गलत है, मगर सामाजिक नजरिया तो फिलहाल यही है। वो अपने नीचे का होंठ दांतों तले पीसने लगी और फिर उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने आगे कहा, अगर उस दिन मैं उसे भगाकर ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी न पीती। इसलिए मेरी हिम्मत न हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के जैसे हैं, फिर शादी चाहे हो न हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया, खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि कपल्स आर मेड इन हेवन, जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आने लगी, उन लोगों का डिमांड बढ़ने लगा। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननंद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ यही रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षघर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी उससे शादी हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, और ना उसका परिवार। फिर किसी तरह मैं हम दोनों के घर वालों को समझा बुझा कर फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो लोग गलत लोगों में फंस जाती। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। यहाँ काम की बात ये है कि कौन ज्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का एक घूंट लिया और तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स को गिल्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो कि दोनों तरफ का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति हो, वो ही सबसे सही है। बुरा मत मानना, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, और न ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने लगभग चिढ़ते हुए कहा, तो फिर आप ही बता दीजिए क्या है इश्क का सही मतलब। मैंने उसे भरोसा दिलाने के अंदाज में कहा, तुम इश्क में हो, नो डाउट। तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया था, और जिन जनाब ने तुम्हारे दिमाग में ये फितूर भरा है वो यकीनन इश्क में नहीं है। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, तीनों ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है, क्योंकि उसका दिमाग इतना काम नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था। वो शातिर होता तो कैस से मजनू न बन पाता। फरहाद ने श्री के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क में था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, तो कहीं किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। पर किसी ने भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है, इश्क समर्पण करने को कहते हैं। इसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया, लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खोसी गई, उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा, तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, जबकि तुमको एक बार अपने आशिक को भी आजमा कर देख लेना था। मुझे यकीन है कि ना तो उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही दिमाग पर। उसकी प्लानिंग देखकर तो लगता है कि वो अकलमंद है और अपने लिए अच्छा ही सोच लेगा। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को भी इश्क हो जाता है। वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेरिंग, कुछ अलग करने का फितूर है और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसे लग रहा था कि वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फोन पर स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्रिय अभी भी उसी की तरफ थी। मैन विल बी मैन। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुंच गई। अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझसे कहा एक कॉल करना है। मैंने अपना मोबाइल उसे दे दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दे दी। उसने मोबाइल से सिम निकाली और तोड़ दी। वापस पिन मेरी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराई और बोली, थैंक यू मिस्टर अजनबी। यह कहकर वो भीड़ में कहीं गुम हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, नसीहत? कभी कभी कुछ ऐसे इंसान हमें चलते चलते मिल जाते हैं, जो हमें एक ऐसी नसीहत दे जाते हैं जो हमें ज़िंदगी में बहुत काम आ जाती है और हम एक गलत कदम उठाने से बच जाते हैं। ये कहानी नसीहत भी कुछ ऐसी ही थी और उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी मेरी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी चलते चलते।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते।